السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين. آج بہت زیادہ اداسی ہے اس بات کی کہ رمضان بس اب اپنی آخری ہی لمحات میں ہے. ایک دن رہ گیا یا دو دن رہ گئے ہیں اور پھر یہ مہمان ہم سے رخصت ہو جائے گا. یہ اتنی تیزی سے گزرا کہ ایسے لگتا ہے ابھی کل شروع ہوا تھا اور جانے کا وقت بھی آ گیا اس کا. اور ہمیشہ کی طرح ہم ابھی سنبھل ہی رہے تھے، ابھی تو کچھ کیا ہی نہیں تھا اور وقت بھی ختم ہو گیا. کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسی حسرت اس وقت ہو جب دنیا سے جانے کا وقت ہو جائے کہ ابھی تو کچھ کیا ہی نہیں تھا، ابھی تو کرنا تھا. اور جب وقت ختم ہوتا ہے تبھی انسان کو احساس ہوتا ہے کہ یہ تو گزر گیا، میں نے تو سوچا نہیں تھا اتنی تیزی سے گزر جائے گا. زندگی بھی تو اتنی تیزی سے گزر رہی ہے، لیکن جس کو منزل کا شوق لگ جائے پھر وہ یہاں پہ ضرور تیاری کرتا ہے. چاہے راستہ کتنا ہی مشکل ہو، چاہے راستے میں کتنی ہی اٹریکشن ہو، چاہے کوئی کدھر بلا رہا ہے کوئی ادھر بلا رہا ہے، چاہے ڈسٹریکشن ہے چاہے اٹریکشن ہے چاہے بڑا کچھ ہے جو بڑی دل فریبیاں ہیں، مگر جس بندے کا شوق آخرت ہو جائے پھر اس کو یہ چیزیں ڈسٹریکٹ نہیں کرتی، پھر وہ ان میں کھوتا نہیں ہے کیونکہ وہ مسلسل کوشش کرتا رہتا ہے کہ میں اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا ہوں تو میں اس کی تیاری کروں. یہ زندگی جو آج ہم گزار رہے ہیں یہ صرف ایک راستے کی حیثیت رکھتی ہے، یہ منزل نہیں ہے. منزل تو موت کے بعد ہے. اب اس راستے میں کہیں کانٹے ہوں گے، کہیں پھول ہوں گے، کہیں اٹریکشن ہوگی، کہیں ڈسٹریکشن ہوگی. اصل عقل مند وہ ہے جو نہ تو پھولوں میں اتنا الجھ جائے کہ اس کو یاد ہی نہ رہے کہ ایک آخرت ہے، ایک منزل ہے میری. پھولوں میں ہی اتنا اس کی دل فریبیوں میں، اس کی خوبصورتیوں میں، اس کے اندر اتنی زیادہ وہ اپنے آپ کو مشغول کر لے ان میں کہ اس کو بھول ہی جائے کہ میں تو راستے پہ چل رہا ہوں، ایک منزل ہے میری. نہ ہی کانٹے یہاں کے، یعنی یہاں کی جو سختیاں ہیں، مشکلیں ہیں، مصیبتیں ہیں، غم ہیں، پریشانیاں ہیں، نہ ہی یہ اپنے اندر اس قدر انوالو کر لیں کہ ہمارا دل ہر وقت انہی کے اندر ہو اور دل ٹوٹا رہے اور دل انہی پہ پریشان رہے کہ آخرت کی پریشانی ہی نہ ہمیں یاد رہے. تو جس کو آخرت کے شوق لگ جاتے ہیں نا، وہ تو کوئی اور ہی لوگ ہوتے ہیں. پھر وہ رہتے تو دنیا میں ہیں لیکن ان کا ذہن، ان کا دل، ان کی فکریں، ان کی سوچیں سب آخرت بن جاتی ہیں. وہ کسی اور ہی لینس سے دنیا کو دیکھتے ہیں، اس سے نہیں دیکھتے جس سے ہم دیکھتے ہیں. اور आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने तमाम फिक्रों को छोड़ के एक ही फिक्र लगा ली, यानी आखरत की फिक्र, आखरत की फिक्र, उसको दिन रात उठते बैठते चलते फिरते, वो कोई काम तो कर रहा है दुनिया में, लेकिन बस फिक्र उसको एक ही लगी हुई, जैसे हमें अपने बच्चों की फिक्र लगी होती है ना, दिमाग में बस सारा वक्त आ गया स्कूल से कि नहीं आया, खाना खाया कि नहीं खाया, होमवर्क किया कि नहीं किया, सोया कि नहीं सोया, क्या कर रहा है इस वक्त, यानी कॉन्स्टेंटली हमारे दिमाग पे, माओ के जो खास तौर पे, कि यही चीज सवार रहती है। तो जिसकी आखरत सवार रहेगी ना दिमाग पे, उसकी फिक्र, अल्लाह ताला दुनिया की फिक्रों के मामले में उसके लिए काफी हो जाएगा। और जिसको दुनिया ही परेशान रखे और वो आखरत को भूला रहे, तो अल्लाह ताला को फिर परवाह नहीं है कि किस वादी में हलाक होता है, फिर अल्लाह ताला तो दुनिया ही दुनिया उसकी आंखों के सामने रखता है, उसकी मोहताजी उसके सामने रहती है, फिर भी दुनिया उतनी ही मिलती है जितनी उसकी तकदीर में लिखी। तो फिक्र करने की असल चीज और शौक रखने की असल चीज आखरत है, जन्नत है, जिसने कभी खत्म नहीं होना। जो इसकी फिक्र में रहेगा ना, उसके दुनिया के मामला सारे अल्लाह ताला ने खुद ही संवार देने, सुधार देने, क्योंकि आखरत की बेहतरी के लिए जो रास्ता इंसान अपनाता है उस पर चलने से दुनिया के मामला खुद ब खुद सही हो जाते हैं। लेकिन हमें आखरत की फिक्र लगी नहीं जैसे लगनी चाहिए, और ना ही ऐसा शौक है जैसे शौक होना चाहिए। जितना शौक हमें दुनिया की कोई चीज हासिल करने का है ना, उतना जन्नत का नहीं है, बस मांग लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए आप दुनिया में एक घर बनाने लगते हैं ना, लोग कितनी कितने साल मेहनत करते हैं, पैसे जोड़ते हैं, फिर उसके बाद कहीं कोई घर लेने के काबिल होते हैं, और इसके लिए बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, जगह जगह छोटी छोटी चीज पे भी सेव करते हैं कि नहीं हमने घर बनाना है, हमारी अपनी एक छत हो जाए, सारी जिंदगी की कमाई उनकी इसी की होती है, ये अपना घर हो जाए, किराए पे धक्के ना खाएं, ऐसा ही है ना, मॉर्गेज वगैरह का तो सिस्टम पहले नहीं होता था। तो जिसको जन्नत में घर बनाना है, कैसे हो सकता है कि उसको ये फिक्र ही ना हो, वो इसके लिए जोड़े ना, जोड़ते हैं ना लोग जोड़ जोड़ के, और फिर उसके बाद एक घर खरीदते हैं। तो जन्नत में जो घर बनाना चाहता है, क्या वो कुछ जोड़ने के माइंडसेट के साथ नहीं रहेगा इस दुनिया में, उसकी प्लानिंग नहीं करेगा? अल्लाह अकबर। जो आखरत को भूला रहता है ना, हर वक्त दुनिया की फिक्रें उसके दिमाग पे हावी रहती है, वो इनके चक्करों में इतना परेशान रहता है, ये हाँ ये ना नुकसान हो जाए, वो ना हो जाए, किसी तरह मुझे ये चीज मिल जाए, किसी तरह मैं उसको हासिल कर लूं, अल्लाह ताला भी उसको फिर अकेला ही छोड़ देता है, जहां तू अपनी इन्हीं फिक्रों में पड़ा रहा, उसकी मदद नहीं आती। और इसी सोच विचार और परेशानियों में वो पड़ा रहता है, फिर भी उसको दुनिया उतनी ही मिलती है, इससे ज्यादा नहीं मिल जाती परेशान होने से, उतनी ही मिलती जितनी उसके नसीब में। फिर जिन लोगों के दिलों में आखरत की फिक्र होती ना वो, और उसका शौक होता है ना, वो कभी यानी चैन नहीं उनको आता कि ओह बहुत कर लिया इस रमजान में, तो मैंने बड़ा ही कर लिया, बहुत मैंने तो कमाल ही कर दिया इस दफा, तो इतना किया इतना किया, और क्या करना था, इससे ज्यादा क्या कर सकती थी। वो ऐसे नहीं होते, वो कभी कंटेंट नहीं होते उसके ऊपर, जैसे जिसको पैसे कमाने का शौक होता है, कभी आपने उसको देखा है कि वो मुतमईन हो जाए कि भाई मैंने इतना घर ही है ना, एक घर ले लिया है, गाड़ी है मेरे पास, सवारी भी है, छत भी है, बस ठीक है अब जितना भी गुजर, नहीं, वो कहते नहीं, ये भी हो वो भी हो वो भी हो वो भी, इतनी दौड़ के वो अल्हाकुम तकासुरु हत्ता ज़ुरतुम अल-मकाबिर, कब्रों पे पहुंच जाएंगे, कब्रों में पहुंच जाएंगे, उनकी हिरस नहीं खत्म होती, और अच्छा एक घर है तो कोई बात नहीं, एक और बना लेते, एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एक गाड़ी है तो नहीं एक और भी होनी चाहिए, ऐसी भी होनी चाहिए और लेटेस्ट वैसी भी होनी चाहिए, और फिर सिर्फ यही नहीं है, अब उसके बाद मेरे पास इतना पैसा हो कि मैं वेकेशन पे फलां जगह जाऊं और मैंने ये करूं, मतलब इंसान की हिर्स खत्म नहीं होती। जो पैसे वाले की हिर्स कभी खत्म नहीं होती। मुझे बताइए, जो नेकियों का हरीस हो, जो जन्नत में अपना घर बनाना चाहता और उसको पता है कि उसकी करेंसी जो है ना वो नेक आमाल है ईमान के बाद, वो कभी कहेगा कि मेरा दिल भर गया नेकी से, बस काफी हो गई है? वो तो हर वक्त यही रहेगा कि पता नहीं जो किया भी है वो भी पता नहीं कबूल है कि नहीं है, और पता नहीं है ये इतना काफी भी होगा जन्नत में ले जाने के लिए कि नहीं, मुझे पता नहीं। अब मेरी गुनाहों के मुकाबले में ये कम है या उसके बराबर तो नहीं होगा, ये बढ़ा के नहीं मेरे गुनाहों के मुकाबले में, क्योंकि तराजू में तो तोले जाएंगे नेक अमाल भी और गुनाह भी, तो पता नहीं है कि ये मेरी नेकी बढ़ेगी कि घट जाएगी। उसको तो यही फिक्र सताई रहती है, वो कहाँ चैन से बैठ सकता है? और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, लज्जतों को मिटा देने वाली को कसरत से याद करो। क्या चीज है जो लज्जतों को मिटा देती? मौत। ये फिर इंसान को फिक्र लगाती है, अगर कभी इसको याद ही नहीं करेंगे ना तो फिक्र भी नहीं कभी रहेगी, आएगी ही नहीं फिक्र। जिसने कहा है कि मैंने यहीं रहना है उसको क्या फिक्र है भाई, जब होगा तब की बात है, देखा जाएगा। अभी तो दुनिया ही मर रही है, मैंने थोड़ी मरना है, मेरे तो अभी बहुत दिन पड़े हैं। जिसको ये है फिर वो क्या फिक्र रहेगी उसको कि पता नहीं मेरी नेकी बढ़ती है कि नहीं घटती है, क्या होता है मेरे साथ। भाई जब होगा ना तब की बात है, अभी क्यों हमें डराते हो? फिर वो ये कहता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, कितना याद करो, कभी कभी याद कर लिया करना, नहीं फरमाया कसरत से याद करो, बहुत ज्यादा याद करो। और हम जिस जिक्र से सबसे ज्यादा भागते हैं ना वो यही है, या ये इंसान को सीधा कर देती है लज्जतों को मिटा देने वाली। कैसे? कि जब इंसान इसको सोचता है ना तो लज्जतें दुनिया की ना खुद बहुत खत्म हो जाती हैं या कम हो जाती हैं, एटलीस्ट दिलचस्पी इनमें कम हो जाती है, इंटरेस्ट कम हो जाता है कि देखो ये तो सारा कुछ चला ही जाना है, मैं किन चक्करों में पड़ा हूं। अल्लाह अकबर, बड़े बड़े लोग यहां पे आए, वो भी इसी तरह दुनिया के अंदर लगे रहे लगे रहे लगे रहे, फिर उसके बाद जब जाने का वक्त आया तो फिर उनकी आंखें खुली और फिर उन्होंने सोचा ये क्या हो गया। बनू उमैया का जो मशहूर खलीफा अब्दुल मलिक, उसको जब मरने का यकीन हो गया ना तो उसने कहा, जब से मैं पैदा हुआ मुझे यही आरजू रही है कि मैं किसी तरह अपने आप को खुश कर सकूं, लेकिन मुझे कभी सच्ची खुशी नहीं मिली। मैंने हुकूमत ली इसलिए अपने सर पे कि बादशाहत इंसान की तरक्की की पीक है, मेराज है, लेकिन मुझे धोखा लगा। मैंने जो कुछ किया इस पे अब मैं अफसोस करता हूं, मगर अब अफसोस का वक्त गुजर चुका है और मैं नाकाम और नामुराद और गुनाहों का बहार लिए दुनिया से जा रहा हूं। मैंने जो अपना अपने लिए रास्ता मुंतखब किया वो तो गलत था, मेरे हाल से और अंजाम से इबरत हासिल करो। ये उसने कहा, सारी जिंदगी इस चीज के पीछे दौड़ते रहना कि भाई बादशाहत मिल जाए, बादशाहत मिल जाए, बादशाहत मिल गई तो पता चला वो इसके अंदर तो कुछ भी ऐसा नहीं था कि इसके पीछे मैंने अपनी जिंदगी लगा दी, इसमें तो कोई खुशी नहीं। अल्लाह ताला ने खुशी जन्नत में रखी है और लोग उसको दुनिया में तलाश करते हैं। यहाँ पे आपको कभी खुशी, हकीकी खुशी नहीं मिल सकती, टेम्परेरी छोटी छोटी ऐसे ना पायदार सी, ये थोड़ी देर के लिए इतनी कहीं हो जाएगी, लेकिन जो असल दिल की खुशी है वो जन्नत में। लोग उसको दुनिया में तलाश करने में मारे मारे फिरते रहते हैं, इसीलिए जब एक चीज मिलती है सोचते हैं इससे खुशी मिलेगी, जब वो मिल जाती तो अच्छा 2 दिन खुशी मिली, उसके बाद फिर वही चीज आम सी हो गई वो। आप देखिए, आप कोई घर खरीदते, गाड़ी खरीदते, पता नहीं जिसको आप इतनी चाहत से, या कोई जेवर है या कोई कपड़ा है, आपको लगता है बस ये मिल जाए ना मुझे तो क्या ही बात है। जब वो मिल जाता है, कितने दिन खुशी रहती है? 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, उसके बाद वो आम ही लगने लगता है। तो दुनिया में हकीकी खुशी कभी भी हासिल नहीं हो सकती। इसी तरह आप देखें, ये वो लोग हैं जो कि यानी अपनी, जिसको कहेंगे अपनी जिंदगी में दुनियावी तौर पर टॉप पे पहुंचे। हारून रशीद को देखें, जब मौत का वक्त आया तो तू उसके इलाके में था, जिस घर में ठहरा हुआ था उसी में अपने लिए कब्र खुदवाई। जब कब्र खुद गई ना, तो हाफिजों को उसने कब्र में उतरवाया, कुराने पाक यहाँ पे पढ़ो, पूरा कुरान उनसे खत्म कराया हुफाज को अपनी कब्र में उतरवा के, और कहने लगा लोगों गवार है ना मैं अल्लाह पर ईमान रखता और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का कायल हूं, लेकिन मैं गुनाहगार हूं जिसने सारी उम्र गम खत्म करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी मेरे गम खत्म नहीं हुए। मैंने बड़ी फिक्रों में जिंदगी और बड़ी गम वाली जिंदगी गुजारी, हुकूमत के कामों ने मुझे हमेशा मसरूफ रखा और मुझे खुदा से गाफिल रखा। अब वो मुझे माफ कर दे, मुझे जिंदगी का कोई दिन ऐसा नहीं याद कि जो मैंने बेफिक्री के साथ गुजारा। लो अब मैं मौत के किनारे पे हूं, मौत मुझे तुमसे जुदा कर देगी और ये कब्र जो इस वक्त मुंह खोले हुए है, ये मेरे सामने है, ये मेरे जिस्म को निगल लेगी। कहने लगा यही है हर इंसान का अंजाम, यही है, मगर इंसान अपने अंजाम से कितना गाफिल है। फिर हारून रशीद के बेटे मामून रशीद के एहद को समझा जाता है कि बनू बास का सुनहरा दौर था। जब मामून के आखिरी लम्हात आए, तो वक्त का एक मशहूर जुबानदान था जाहिज, वो इयादत के लिए आया तो देखा कि एक खाल का बिछोना बिछाया हुआ है, उस पे रेत पड़ी हुई है और मामून उस पर लोट पोट हो रहे हैं, और जुबान पे क्या है, ए वो जिसकी बादशाही कभी खत्म नहीं होनी, उस पे रहम कर दे जिसकी बादशाहत अब जा रही है, ए वो जो कभी मरेगा नहीं उस पर रहम कर जो मर रहा है। जाहिज ने कहा खुदा अमीरुल मोमिनीन का जाहो जलाल ज्यादा करे, तंदुरुस्ती बख्शे। मामून ने कहा मेरी तंदुरुस्ती की दुआ ना करो, मेरी मगफिरत की दुआ करो। फिर मामून ने कहा अल्लाह तूने हमें हुक्म दिए और हमने नाफरमानी की, तू मुझे बख्श दे क्योंकि तू बड़ा रहीम है। अल्लाह हु अकबर। वो लोग थे जिन जिनके कहाँ बड़े बड़े नाम, हटो बच्चों के शोर, बादशाहतें इनकी, अल्लाह हु अकबर। और लेकिन देखें बच ये भी नहीं सके, और जब इनके जाने के वक्त आए तो इनको कैसी हसरतें थी। हालांकि इन्होंने दुनिया में वो सब हासिल कर लिया था जो किसी की भी तमन्ना होती है, कोई भी बंदा चाहता है बस मुझे ये मिल जाए, इतना इकतदार, बादशाहत। अल्लाह अकबर। इसी तरह बनू बास के खलीफा वासिक बिल्ला ने भी कहा था ना मरते वक्त कि मौत में सब बराबर हैं, ना बाजारी लोग बचेंगे ना बादशाह, गरीबों को उनकी गुर्बत ने कब्र में कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और अमीरों को उनकी अमीरी ने कोई फायदा भी नहीं पहुंचाया। नहीं, उसको क्या फर्क पड़ा, वो गरीब जो था कौन सा, उसको कब्र में गया तो उसको बड़ा नुकसान हो गया, या अमीर को कौन सा फायदा हो गया। फिर हुक्म दिया कि फर्श उठा दिया जाए और अपना रुखसार जमीन पे रख के चिल्लाने लगा, ए वो जिसकी बादशाहत लाजवाल है इस पर रहम कर दे जिसकी बादशाहत खत्म हो गई। ये आखिरी उसके अल्फाज थे। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने बताया दुनिया को कि देखो लोगों कितना कुछ भी हासिल कर लोगे ना, लेकिन आखिर एक दिन छोड़ के जाना है। ऐसे जैसे आज ये रमजान हमसे रुखसत हो रहा है, जा रहा है, अब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो हाय हाय किस किधर चले गए ये 28-29 दिन, पता ही नहीं चला। जिंदगी भी तो ऐसे ही हमारे हाथों से निकल रही है, पता ही नहीं चल रहा। इसका तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास रमजान के बाद भी वक्त है, अल्लाह को पता है, लेकिन हम उम्मीद रखते हैं कि जब दुनिया से जाने वाले होंगे तब तो वक्त खत्म हो चुका होगा। अभी हसरत इतनी हो रही है कि हाय कुछ तो किया नहीं, रमजान खत्म भी हो गया, उस वक्त कितनी होगी। बहुत सारे औकात थे रमजान में जिनमें हम बातें करने की बजाय सुबहान अल्लाह कह सकते थे। वो सुबहान अल्लाह 1000 दफा सुबहान अल्लाह कहेंगे, रमजान का सूरज गरूब हुआ और आपकी अल्हम्दुलिल्लाह, और वो सुबहान अल्लाह ना उतनी ही उसके ऊपर आ जाएगी सवाब पे। कोई उसके अंदर ऐसा बड़ा बड़ा रिवॉर्ड नहीं होगा जैसा अभी है, लेकिन हमने वेस्ट किए मोमेंट्स। कई ऐसी रातें गुजरी जिसके अंदर हमने उस तरह से नहीं इबादत की जैसे कि हम कर सकते थे। कई ऐसे टाइम्स थे जिनमें हम बेहतर और बेहतर नमाज पढ़ सकते थे खुशू के साथ, हमने नहीं पढ़ी। हम एक्स्ट्रा नवाफिल पढ़ सकते थे, हमने नहीं पढ़े। कई ऐसे टाइम्स आए इस महीने के अंदर कि हम किसी गुनाह से बच सकते थे, लेकिन हमने इतनी परवाह नहीं की और जुबान को लूज छोड़े रखा, और जुबान से पता नहीं क्या क्या निकलता रहा। और हमने कई मौके ऐसे आए रमजान में कि हमें वो नहीं करना चाहिए था जैसे हमने किया, जो हमारे रवैये थे, जो लोगों के साथ हमारी डीलिंग थी। बहुत सारी चीजों को सोचते हैं तो बहुत सारी चीजें जो बेहतर हो सकती थी लेकिन नहीं हुई। बहुत सारे औकात हैं जो जाया होने से बच सकते थे लेकिन हमने जाया कर दिए। इसी रमजान को कयास करें अपनी जिंदगी पर, क्या जाते वक्त ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत सारे, अभी तो ये 29-30 दिन है ना, इतने सालों में कितने सारे दिन और रातें थे जो हमने जाया की। अभी तो ये वो वाला टाइम है जो रमजान का, जो हम फिर भी थोड़ा बहुत संभल के चल रहे थे, थोड़ा बहुत अपने आप को नेकी की तरफ लाने की कोशिश कर रहे थे, थोड़ा जरा प्रोएक्टिव हुए भी थे, जो आम दिनों में हम नहीं करते वो भी कर रहे थे। फिर भी आज दिल में यही है कि और भी बेहतर हो सकता था। तो सोचे जो लापरवाही से गुजारी हुई जिंदगी होगी उस पे कितनी पशेमानी होगी कि और बेहतर हो सकता था। इसलिए याद करें इस वक्त को कि जब दुनिया से जाने का वक्त होगा तो तब मेरे लिए क्या चीज होगी कि मेरी जो तमन्ना हो, क्या ये तमन्ना होगी कि थोड़ी सी और जिंदगी मिल जाती, मैं कुछ बेहतर ही कर लेती, थोड़ा सा और टाइम हो जाता जो मेरे पास होता, मेरे हाथ में होता। लेकिन शायद अभी ये सिर्फ बातें लगती हैं, हमें जितना मर्जी कह देंगे उस तरह असर नहीं होता जब इंसान रियलिटी को फेस करता है ना, तो फिर समझ आती है। आखिरत कोई इतनी आसान नहीं है जितनी कि हमने समझी हुई है कि जैसा तैसा करके कोई ना धक्के दे के हम भी अंदर चले ही जाएंगे जन्नत में, जहां पे इतने लोग जा रहे होंगे तो हम भी कहीं छुप छुपा के निकल जाएंगे। इसके मामला तो बहुत बहुत मुश्किल है। अभी तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला ने जब दरख्त को देखा तो फरमाया काश मैं एक दरख्त होता, आखिरत में मेरे से कोई सवाल तो ना होता। बाग में परिंदों को चहचहाते देखा तो एक आह भर के फरमाया परिंदो तुम कितने मजे में हो, चरते चुगते हो, उड़ते फिरते हो, दरख्तों की शाखों पे बैठते हो, और कयामत में तुम्हारा कोई हिसाब नहीं। काश अबू बकर तुम्हारी तरह होता। अल्लाह ताला तो फरमाता है सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम, तुमसे उस दिन जरूर जरूर पूछा जाएगा नेमतों के बारे में, कितना कुछ बरत रहे हो, कितने ऐशों में रह रहे हो, कितने आराम से जिंदगी गुजार रहे हो, सर पे छत है, खाने को इतना है कि भरे में फ्रिज। इनका सवाल होगा कि फिर उसके बाद किया क्या, तुम्हें तो ज्यादा करना चाहिए था, तुमसे तो ज्यादा बेहतर अमल की एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि तुम्हें अल्लाह ताला ने नेमतें ज्यादा दी थी, तुम क्या करके आए हो, हम थोड़ा थोड़ा करके ही सोच रहे थे, बहुत कर लिया बहुत कर लिया। मैं तो हैरान होती हूँ, जो लोग इतने मुतमईन है यार अल्लाह, सोचते हैं कि पता नहीं वो इतनी इतनी मुबारकबादें दे रहे, आपको ये मुबारक हो, आपने ये, वो किस बात की मुबारकबाद, वो ये तो बहुत छोटे छोटे काम है, आप उम्रा करके है मुबारक हो, आप हज करके है मुबारक हो, क्या मुबारक, जिसने अपने पता नहीं या अल्लाह ताला कितनी उसमें कमियां कितनी उसमें कोताहियां, और अल्लाह ताला तूने बुला लिया, तेरा तो शुक्र है, हम तो तेरे आगे सारी उठाने के काबिल नहीं, क्या मुबारकबाद है, वो मुबारकबाद ना उस दिन देना जिस दिन अल्लाह ताला फरमाएगा ये कामयाब हो गया, उस दिन मुबारकबाद देना, ये तो छोटे छोटे काम है, पता नहीं अल्लाह ताला के यहाँ कबूल भी हुए कि नहीं, इतने निकम्मे काम है इनके अंदर, तो पता नहीं कितनी कोताहियां हैं कितनी कमियां हैं, किस चीज की मुबारकबाद, कौन सा हम पास हो गए हैं, मुबारकबाद के वो लायक है जिसको अल्लाह ताला फरमा दे ये कामयाब हो गया आज, उसके बाद कोई नाकामी नहीं है, जिसको उस दिन कह दिया गया ना ये कामयाब हो गया, बस फिर जरूर मुबारकबाद देना, जरूर देना तब, क्योंकि वो हकीकी मुबारकबादी होगी। ये तो खुद बंदे को खुद नहीं पता क्या किया और वो मुबारकबादें ले रहा हो, तो अपनी इस जिंदगी को जाया होने से बचाना है, ये नहीं कि रमजान गुजर जाए तो उसके बाद फिर, क्योंकि रमजान तो साल में एक दफा आया करेगा, बाकी 11 महीने हम बिल्कुल मादर पिदर आजाद जिंदगी गुजारे ऐसे कि कोई फिक्र ही ना हो, अब एक रमजान में बस हम अच्छे एक मुसलमान बन जाए, इसके ऊपर ये काफी हो जाएगा, हम मुतमईन हैं इस पे, ये बस एक महीना अच्छा गुजर जाए तो बाकी की परवाह नहीं है, तो जिंदगी में कितने रमजान आएंगे सोचे, सारी जिंदगी इसी तरह गुजारनी है ऐसे ही फरमा बरदारी की लगन में, जिसको इम्तिहान की अहमियत का अंदाजा होता है ना वो तैयारी बहुत अच्छी करता है, आप देखें जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं वो इम्तिहान की तैयारी के दिनों के हर लम्हे को कीमती समझते हैं, और तैयारी के दिनों में सारे गैर जरूरी काम छोड़ देते हैं, बाज़ औकात तो रात की नींद भी उनकी नहीं रहती, खाना पीना भी कम हो जाता है कि ज्यादा खा लिया तो नींद आएगी, तैयारी में हरज हो जाएगी, ये तो उनके इम्तिहानों का हाल है जिन्होंने ये दुनिया की जो छोटी छोटी डिग्रियां ही लेनी है, जिन पे कोई हमेशा की जिंदगी का कोई इन्हेसार नहीं है, कोई डिपेंडेंसी नहीं है, जिनमें एक दफा फेल हो भी गया तो कोई बात नहीं है, उसके बाद भी सप्ली आ जाए तो दोबारा भी बैठने का मौका मिल जाता है, लेकिन क्या हाल है उस इम्तिहान का कि जिस पे हमेशा की जिंदगी डिपेंड करती है, जिसमें एक दफा कोई फेल हो गया ना तो सेकंड चांस नहीं उसको मिलना, यही है थोड़ा सा वक्त है जो तैयारी के लिए मिला है, जिसको हम जिसका नाम है दुनिया की जिंदगी, ये है सिर्फ पीरियड तैयारी का, और ये बहुत लिमिटेड है, बहुत शॉर्ट है, ये हाथ से निकल गया तो फिर इसका एक सेकंड भी दोबारा नहीं मिलेगा, एक सेकंड जिसको हमने ऐसे ही बेकार इधर उधर गुजारते रहते हैं, जाया करते रहते हैं, और कहते हैं टाइम पास कर रहे हैं। टाइम तो आपको पास कर रहा है, हाँ आप क्या टाइम को पास करेंगे, टाइम ने आपको पास कर देना। उफ, यही वो वक्त है जिसमें नसीहत पकड़ेंगे तो कोई फायदा हो जाएगा, वरना वो वक्त भी सर पे आने ही वाला है जब अमल का मौका खत्म हो जाएगा। इसीलिए उनको कहा जाएगा जिन्होंने अपनी जिंदगी को जाया कर दिया हुआ खेल तमाशों में, इधर उधर टाइम पास ही करते रहे, फिर उनसे कहा जाएगा क्या हमने तुम्हें इतनी उम्र नहीं दी थी कि तुमने नसीहत हासिल करनी होती तो कर लेते। तो इससे पहले कि कोई कहे या लैतनी कद्दमतु ली हयाती, हाय काश मैं अपनी इस जिंदगी के लिए कुछ भेज देता, उसको उस वक्त जिंदगी क्या कौन सी नजर आएगी? वो जब आखरत के मैदान में खड़ा होगा ना, तब कहेगा काश मैं इस जिंदगी के लिए कुछ भेजता। अब उसको पता चला है असल जिंदगी तो ये है, वो तो क्या था, वो उसको नहीं जिंदगी कह रहा, कहता ये मैं इस जिंदगी के लिए कुछ भेजता। इसीलिए अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला फरमाते ना, अपनी जिंदगी उस दिन पे रो जो गुजर गया और तुमने उसमें कोई नेकी नहीं की, और मशगूलियत से पहले फरागत को गनीमत जानो, मौत से पहले जिंदगी को गनीमत जानो, और बुढ़ापे के आ जाने से पहले जवानी को गनीमत जानो। जो नहीं आज तक कर सका, जो अपनी पिछली जिंदगी में नहीं कर सका, वक्त जाया कर दिया, तो अब भी वक्त है, अब भी उसकी कॉम्पेंसेशन हो सकती है। जब तक सांस चल रही है, अल्लाह अकबर, हम कैसे नादान हैं कि हम उस वक्त को ही भूले में जिसकी तरफ हम तेजी से बढ़ रहे हैं, तेजी से बढ़ रहे हैं। हम कहते हैं ना, हम सब कहते हैं वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है, सब ये बात करते हैं, लेकिन फिर भी हम यकीन रख के भी इसको भूल चुके हैं कि वो हज़रत उस्मान ने फरमाया ना कि ताज्जुब है उस पे, हैरत है उस पे, जो दुनिया को फानी समझता है फिर भी इसी के अंदर लगा हुआ है, ना उसको पता है ये खत्म हो जानी है, फिर भी उसका सारा शौक, सारी सोचे, सारी फिक्रें, सारी भाग दौड़, सारी मेहनत, सारी कोशिशें, सारी उसकी प्लानिंग्स, सब इरादे, सब यहीं के लिए हैं। आगे के लिए कुछ नहीं छोड़ा उसने, ना कोई सोच है, ना कोई प्लानिंग है, ना कोई शौक है, ना कोई फिक्र है, ना कोई इरादा है कि भाई क्या करना है। अल्लाहु अकबर, ताज्जुब है उस पे, कहते हैं जो जहन्नुम को मानता है फिर भी गुनाह करता है, ताज्जुब है उस पे जो जन्नत पे ईमान रखता है फिर भी दुनिया के साथ आराम कर रहा है दुनिया में, ताज्जुब है उस पे जो शैतान को दुश्मन समझता है फिर भी उसकी इताअत करता है, और ताज्जुब है उस पे जो अल्लाह ताला को मानता है, हक मानता है, फिर भी गैरों का जिक्र उसकी जुबान पे हर वक्त रहता है। अल्लाह अकबर, हम कहते हैं बड़ा ही मुश्किल है, ये तो बड़ा मुश्किल है, क्या करें जी, कोई भी काम आसान तब होता है जब उसका शौक लग जाता है, जब उसकी फिक्र लग जाती है, जब उसको आप मकसद बना लेते हैं, जब ये समझ हो जाती है कि इस काम के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, वो जिंदगी का गोल बन जाता है, जब उसके लिए दिल में कशिश होती है। इसलिए सहाबा कराम जो थे, उनके दिलों में आखरत की जिंदगी को कामयाब बनाने की इतनी लगन थी, इतनी कोशिश, इतनी मेहनत, और इतने ज्यादा उन्होंने अपने सर पे इसको सवार कर लिया था ना, कि मुश्किलात के पहाड़ भी उनके लिए आसान हो गए थे। उनको उनको लगन ही लग गई थी कि बस ये हासिल करना है। तो वो तो उठते बैठते चलते फिरते, आप देखिए आप जंगे खंदक में अंसार क्या शेर पढ़ रहे हैं, हम वो हैं जो जिन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात पे बैत ली है कि जब तक जिंदा रहेंगे हमेशा उनके साथ जिहाद जिहाद में लगे रहेंगे। इस पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जवाब दिया था, अल्लाहुम्मा ला आयशा इल्ला आयशुल आखिरा, कोई ऐश नहीं मगर सिर्फ ऐश तो आखरत का ही ऐश है। ए अल्लाह अंसार और मुहाजरीन को इज्जत अता फरमा। ये बुखारी की रिवायत है। अल्लाह अकबर। आप देखिए इसी वजह से उनको ऐसी मतलब ऑल द टाइम उनके जो सोच है या उनके जो शौक है, या उनको इतना ज्यादा पता चल जाता था ना अगर किसी बात के ऊपर कि इस पे अजर है, बस उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते। जैसे अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस के पास 3 आदमी आए, तो उनमें से एक कहने लगा, ए अबू मोहम्मद खुदा की कसम हमें कोई चीज नहीं हमारे पास है, ना हमारे पास कोई खर्चा है, ना कोई सवारी है, ना कोई माल असबाब है। तो उन्होंने फरमाया कि तुम क्या चाहते हो, अगर तुम चाहते हो तो हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हें वो दे देंगे जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिखा हुआ है। अगर तुम चाहते हो तो हम तुम्हारे मामले का जिक्र खलीफा से कर देंगे ताकि वो तुम्हारी मदद करें, और अगर तुम चाहो तो सब्र कर लो, क्योंकि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना है कि जो गरीब मुहाजरीन होंगे कयामत के दिन मालदारों से 40 साल पहले वो जन्नत में चले जाएंगे। बस इतना बात का सुनना था। आप सोचे उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं नहीं आप हमें यहीं पे दे दें, जन्नत तो देखी जाएगी जब आएगी। तो कहने लगे फिर तो बस हम सब्र ही करेंगे, हम नहीं कुछ मांगते फिर। लेकिन उनका इश्तियाक कितना था, सुभान अल्लाह। बस किसी बात का पता चल जाए सही। इसी तरह एक सईद बिन मरजाना बयान करते हैं कि मैंने अबू हुरैरा को फरमाते सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस मुसलमान ने किसी मुसलमान को आज़ाद कर दिया, अल्लाह ताला उस आज़ाद किए जाने के बदले में इसकी हर उज्व को जहन्नुम से आज़ाद कर देगा। यानी किसी मुसलमान को, गुलाम को आज़ाद करती है ना, तो उसकी यानी उसके पूरे जिस्म के हर उज्व के बदले इसका सारा जिस्म जहन्नुम से आज़ाद अल्लाह ताला कर देगा। कहते हैं जब मैंने ये हदीस सुनी तो मैंने जाकर हजरत अली बिन हुसैन को बताया, जिनको जैनुल आबिदीन भी कहते हैं। उन्होंने उसी वक्त जूं ही सुनी, अच्छा ऐसे होगा, अपना एक गुलाम आजाद कर दिया जो इतना कीमती था कि उसकी कीमत 10,000 दिरम थी। अरे उनको ना फौरन जूं ही पता चलता था, पता तो हमें भी चलती हैं चीजें नेकियों का, भाई देखो इसके इतना अजर है। मिसाल के तौर पे ये इशराक के ये 2 नफल पढ़ने का इतना अजर है, हजर उम्रे के बराबर मिलेगा, फिर उसके बाद ये आप सुन्नतें पढ़ लो, 2 सुन्नत फजर की दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर है, फिर आप इस दिन का रोजा रख लो, 6 रोजे रख लो शवाल के, रमजान के अलावा, तो आपके पूरे साल के रोजे। लेकिन हमें क्या उतना शौक होता है कि जो ही पता चल जाता है हम तो एक्साइटेड हो जाते हैं, मैं जल्दी से कर लूँ। जैसे हम किसी सेल के लगने पे एक्साइटेड होते हैं ना, फलां स्टोर में सेल लगी हुई है, वो जी फिर तो हमारा दिल ही बस हर वक्त हाय किसी तरह पहुंच जाऊं मैं, चीजें खत्म ना हो जाए, लोग ले जाएंगे, जल्दी करो, इस तरह शौक लगता है कि भैया जो ही पता चला है हाय मैं जल्दी से कर लूं ये काम। अल्लाह अकबर। उनको तो ये डर लगता था कि अल्लाह दुनिया में कहीं ये ना हो कि हमें ज्यादा खुशहाली मिल गई, तो ये ना हो कि आखिरत में फिर हमें कुछ ना मिले। ये ना हो हमारी नेकियों का अजर हमें दुनिया में ही अल्लाह ताला दे दे। जैसे हजरत अब्दुलरहमान बिन औफ की खिदमत में खाना पेश किया गया तो क्या फरमाते, हजरत मुसअब बिन उमैर तो मुझसे बेहतर थे, वो शहीद हो गए, उन्हें मुफलिसी के आलम में ही चले गए थे ना, उन्होंने तो कोई फतुहात देखी ही नहीं, उनके लिए एक चादर के सिवा और कोई चीज ना थी जो उनका कफन बनती। हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु, वो मुझसे बेहतर थे, वो शहीद हो गए, एक चादर के सिवा कोई चीज नहीं थी उनका कफन बनती। मगर कहते अब मुझे खौफ आता है कहीं ऐसे तो नहीं कि हमारी नेकियों का अजर हमें जल्दी जल्दी दुनिया में ही मिल जाए और आखिरत में हमारे लिए कुछ ना हो, फिर रोने लग पड़े। इतना उनको होता था कि हाय हमारे आखिरत का कोई नुकसान ना हो गया हो, कहीं ऐसा ना हो यहीं पे हमें सारा कुछ मिल जाए, क्योंकि उनके सामने खाना आ गया था, बस इतनी सी बात थी। ये खाने को देख के भी कि ये ना हो कि ये हमें यहाँ पे मिल रही है ये नेमतें और वहां पे ना मिले तो क्या होगा। कभी हमें नेमतें मिलती, हम तो पार्टी टाइप करते हैं, हमें कभी नेमत ज्यादा मिल जाए तो हम तो इतने बस बड़ी सेलिब्रेशन करते हैं, ठीक है आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, लेकिन साथ ये भी होना चाहिए अल्लाह ताला ये ना हो ये आखरत की कोई नेमत हमसे दूर हो जाए तो दुनिया में ही हमें ये सारा कुछ मिल जाए। अल्लाह अकबर, ये भी तो सोचना चाहिए, ये भी सोचना चाहिए कि कयामत के दिन जब अल्लाह ताला लोगों को जमा करेगा और जहन्नुम के ऊपर पुश्त पे उसकी वो पुल सिरात लगाया जाएगा और उस पे से लोगों को गुजारा जाएगा, उस दिन अंबिया के सिवा कोई बात नहीं कर सकेगा, और अंबिया भी सिर्फ क्या बात कर रहे होंगे, अल्लाहुम्मा सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लिम अल्लाह सलामती सलामती, क्योंकि जहन्नुम पे कांटे होंगे, उन उस पुल के ऊपर से गुजरना है जो इतना बारीक है कि बाल के बराबर बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है, जिसको अल्लाह ताला चाहेगा वो उससे ऐसे गुजर जाएगा पता ही नहीं चलेगा, इतनी तेजी से गुजर जाएगा उसको पता ही नहीं चलेगा नीचे जहन्नुम में, कोई आहिस्ता गुजर रहा होगा कोई कुछ। हमारा ईमान कितना है और हमारे पास नेक अमाल कितने हैं और हम किस स्पीड से जाना चाहते हैं। अब दुआएं तो हम करते नहीं, या अल्लाह हमें इतनी तेजी से गुजार देना बिजली की सी तेजी से, हम दुआएं तो कर रहे हैं लेकिन क्या मेरा अमल भी उस तरह से है, नेकियों में भी मैं इतनी तेजी से भागती हूं या सोच सोच के आराम आराम से सारे कर लें तो फिर हम कर लेंगे, या इतना भी क्या हो गया, ना भी किया तो क्या फर्क पड़ गया, ये कोई फर्ज थोड़ी है। तो वहां पे भी फिर इतनी तेजी से गुजरने के का ना समझें कि फिर हम इतनी तेजी से जा सकते हैं, अगर आज हम गुनाहों से इतनी तेजी से नहीं दूर भागते, अगर आज नेकियों में इतनी तेजी से नहीं दौड़ते, तो वहां पे कैसे एकदम से भागना शुरू कर देंगे। ये तो सारा डिपेंड करेगा कि हमने दुनिया में क्या किया और क्या लेकर वहां पहुंचे हैं, उसके ऊपर ये सब डिपेंड करेगा, कितनी तेजी से आपने जाना है, किसको कितना नूर मिला हुआ है, क्योंकि अंधेरा घुप हो जाएगा, इतना अंधेरा, अब उसके अंदर जिसकी ईमान की और अमले साले की नेकियों की लाइट, ये लाइट बन जाएंगे, ये नूर होगा, इस नूर के अंदर ही चलना है। अब आपको कितना नूर चाहिए, जहन्नुम से क्रॉस होना है आपने, कितना नूर चाहिए, जहन्नुम तो इतनी स्याह काली है, उसकी शोलों के अंदर कोई ऐसी लाइट नहीं है, और चीख रही होगी और धाड़ रही होगी और चाहती होगी कि लोगों को उचक ले, और इसके ऊपर इसके पुल के ऊपर कांटे की तरह के आंकड़े होंगे जिसमें लोग फंस फंस के नीचे गिर रहे होंगे। अब ऐसा नहीं कि मेरे अंदर कितनी स्ट्रेंथ है या मेरे अंदर कितनी महारत है या मैं तो कभी हाइट से डरती नहीं या मुझे तो ऐसी चीजों से मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये मेरी अपनी पर्सनल स्ट्रेंथ पे डिपेंड नहीं करता, ये सब डिपेंड करता है कि उस दिन अल्लाह ताला किसको पार करा दे सलामती के साथ। इसीलिए तो हम बिया कह रहे होंगे अल्लाहुम्मा सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लिम, वो पार हो जाएंगे फिर वो कहेंगे अल्लाह सलामती सलामती, उसके अलावा तो कोई बात होगी नहीं वहां पे, और अंबिया के अलावा कोई बोल नहीं पाएगा, बोलतियां बंद हो जानी है। तो तो बहुत मुश्किल चीजें हैं, बहुत मुश्किल मरहले हैं जिनमें जिनके लिए हमें यहां से सामान लेकर जाना है। वहां पे लाइट नहीं है, वहां पे आसानियां नहीं है, जब तक कि हमारे पास नेकियों के सामान ना हो और गुनाहों का बैगेज कम से कम हो, कम से कम। गुनाह हैं जो इंसान की नेकियों को भी खा जाते हैं, गुनाह हैं जिनकी वजह से फिर जो नेकियों का स्केल है, जाहिर है आप दोनों तरफ चीजें रखेंगे और दोनों तरफ अगर आपने एक तरफ कोई फल रख दिए तो दूसरी तरफ पत्थर रख दिए तो बराबर ही होगा। आप उधर भी भरते जाएं और इधर भी भरते जाएं तो क्या होगा? जहां नेकियां पे जोर और शोर से हो रही हैं, वहां पे गुनाह भी उसी स्पीड से लगे हुए, तो फिर कैसे पार होंगे? क्योंकि गुनाह तो अंधेरे हैं। इसी वजह से हमें जरूरत है हम अल्लाह ताला से मांगें कि अल्लाह हमें दुनिया और आखिरत की भलाई दे। इसी वजह से जरूरत है कि हम हमारे पास जो अमल की मुद्दत है इसको हम गनीमत जाने और इसमें अपनी स्पीड को बढ़ाएं, जिंदगी के हर लम्हे की कदर करें, क्योंकि इसी के ऊपर डिपेंड करती है हमारी हमेशा की जिंदगी। और कभी कोई मुसीबत मुश्किल आए भी तो मौत की तमन्ना ना करें, इसलिए कि मौत आ गई तो बस दरवाजा बंद हो गया, अब ना कोई नेकी कर सकते हैं ना कोई तौबा इस्तिगफार कर सकते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला से वो उम्र मांगे जो बरकत वाली उम्र हो, जो भलाइयों में इजाफे वाली उम्र हो। और कल हमने बात की थी फितनों की, कि फितने जितने ज्यादा हैं उतनी ही ज्यादा हमारी तरफ से जरूरत है कि हम स्ट्रांग हो अपने ईमान में, उतनी ज्यादा हमें स्ट्रेंथ चाहिए, वरना फितने उड़ा के ले जाते हैं जैसे आंधियां जो कमजोर चीजें होती हैं उनको उड़ा के ले जाती हैं, कमजोर पौधों को उड़ा के ले जाती हैं, वीक जो घर होते हैं उनको भी उड़ा के ले जाती हैं। तो ऐसे तूफान में, और आप मानते हैं कि फितना बहुत है, ऐसे तूफान में कितनी ज्यादा जरूरत है कि हमारे ईमान मजबूत हो, और ईमान की मजबूती के लिए कितनी ज्यादा जरूरत है कि हम वही के इल्म के साथ जुड़ जाएं। ये जिंदगी आप ऐसे नहीं गुजार सकते कि अपनी अकलों के बलबूते के ऊपर आप गुजार के यहां से चले जाएं। अगर चाहते हैं मंजिल तक सलामती के साथ पहुंचना है तो वही का इल्म जरूरी है, ये वो रोशनी है जो आपको मंजिल तक पहुंचाएगी, जो आपके रास्ते को रोशन करती जाएगी। जिंदगी के ये सफर जो आप तय कर रहे हैं, आप अगर चाहते हैं कि वाकई जो मेरी मंजिल है वहीं तक पहुंचूं और कहीं गुमराह ना हो, कहीं एग्जिट ना ले लूं, कहीं रास्ता गुम ना कर दूं, तो फिर इल्मे वही को साथ रखना होगा, इसको समझना होगा, इसको सीखना होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो दीन का इल्म हासिल करता है अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि रोशनी हो जाएगी, ये रोशनी है, ये नूर है। इसके लिए सहाबा ने, तहाबीन ने अपने घर छोड़े। आप देखें, आप जब मदीना जाते हैं सुफा वालों का जगह देखते होंगे आप, ये कौन लोग थे? ये वही तो लोग थे जिनके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जगह बनाई थी कि वो इल्म लेने के लिए आए, वही का इल्म सीखने के लिए अपने घरों से निकले हुए थे, अपने घर बार छोड़े थे, अपने काम कारोबार छोड़े थे उन्होंने, अपने खानदान छोड़े थे उन्होंने, और ये मुशक्कत उठाई थी। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला ने ऐसे ही तो नहीं इतनी सारी अहादीस रिवायत कर दी, वो भी वहां पे रहते थे, अपना घर बार छोड़ के आए हुए थे और भूख की वजह से कई दफा जमीन पे गिर जाते थे, पेट पे पत्थर बांध लेते थे। लोग समझते थे पत्नी पागल है, जुनून है, लेकिन कहते हैं इतनी भूख होती थी, लेकिन सिर्फ किस लिए? कि ये इल्म लेना है जो वही का इल्म है। फिर आप बाद में भी देखे लोगों ने बुखारी, ऐसे ही इमाम बुखारी नहीं बन गए, उन्होंने कितने लंबे सफर किए। और उस वक्त सफर कैसे होते थे, कुछ जहाजों में नहीं जा रहे होते थे, अक्सर पैदल होते थे क्योंकि उनके पास सवारियां भी नहीं होती थी, लेकिन फिर भी वो घरों से निकले और उन्होंने जाके इल्म लिया। इल्म वालों का तो बड़ा मकाम है अल्लाह ताला के। हाँ, अल्लाह ताला ने सूरह आल इमरान में जहां पे फरिश्तों का जिक्र किया ना, उनके साथ इल्म वालों का जिक्र किया, शाहिद अल्लाह अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुआ वल मलाइका तु व उलुल इल्मी कायमन बिल किस्त। अल्लाह ताला गवाही देता है कि उसके सिवा कोई इलाह नहीं, और फरिश्ते गवाही देते, और इल्म वाले भी अदल के साथ गवाही देते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म वालों को, जो इल्म लेते हैं वही का, उनको अंबिया का वारिस करार दिया। और वारिस तो वही होता है ना जो मरने वाले का करीबी रिश्तेदार होता है, करीब तरीन लोगों को ही हम वारिस कहते हैं ना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुर्बत का ये शर्फ है उसको मिलता है जो दीन का इल्म हासिल करता है, वो वारिस बनता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ऐसे लोगों से फरिश्ते मोहब्बत करते हैं जो दीन का इल्म लेते हैं, इनके कदमों के नीचे अपने बाजू फैलाते हैं, अपने पर फैलाते हैं, इनके लिए जमीन और आसमान की हर चीज बख्शिश मांगती है। तो अजर और सवाब के दरवाजे खुल जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, इस किताब के जरिए अल्लाह ताला बाज लोगों को इज्जत और बाज को जिल्लत देता है। और इज्जत मिली वो लोग जो गुलाम थे, और गुलामों की कोई जिंदगी नहीं होती थी, उनको बेचा खरीदा जाता था जानवरों की तरह। लेकिन जब उन्होंने कुरान और हदीस की तालीम ली तो बड़े बड़े मुफ्ती बने, फकीर बने, और अल्लाह ताला ने उनको इतनी इज्जतें दी। एक नाम आपके सामने लेती हूँ, बाकियों को तो शायद नहीं आप जानते हो, हजरत हसन बसरी को सब जानते हैं। कौन थे वो? भी गुलामों की औलाद में से ही थे। तो फिर आप देख ले, आज भी उनका नाम जिंदा है। ये और भी बहुत सारे गुलामों का जिक्र आता है जो जिन्होंने तफसीर, हदीस, दीन के और उलूम को हासिल किया और बहुत बड़े बड़े मर्तबों पे पहुंचे। तो आप इस इल्म को मामूली ना समझे, अपनी खुशकिस्मती समझिएगा अगर अल्लाह ताला आपको इसके लिए चुन लेता है। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। किसी और स्टूडेंट को नहीं कहा जो बेहतरीन वो है जो डॉक्टर बन जाए, बेहतरीन वो है जो पीएचडी कर ले साइंस में, उसमें फलां चीज के अंदर, ये नहीं फरमाया। जो मास्टर्स कर ले, जो बड़ा फलसफी बन जाए, जो फलां ही हार्वर्ड की डिग्री हासिल कर ले वो बेहतरीन है, नहीं, जो कुरान सीखे और
नहीं।
सिखाए। तो जो दीन का इल्म लेता है उसके पांच तो इनामात, हदीस से साबित है कि जन्नत का रास्ता आसान हो जाता है। अल्लाह ताला उस पे सकीनत नाजिल करता है, सुकून रहता है उसके दिल को, अल्लाह ताला इसके ऊपर अपनी रहमत के साए रखता है, फरिश्ते उसके लिए पर बिछाते हैं, अल्लाह ताला उनका जिक्र फरिश्तों में करता है। और क्या चाहिए इंसान को कि उसका जिक्र अल्लाह ताला आसमानों में करे, उसको बेस्ट बंदा करार दे दे। और सबसे बड़ी बात जो मैं आज आपके सामने रखना चाहती हूँ, क्या मिलेगा आपको अगर आप कुरान और हदीस का इल्म हासिल करने के लिए आगे बढ़ेंगे? आपका ताल्लुक चंद वास्तों के बाद बराह रास्त अल्लाह ताला और उसके रसूल के साथ जुड़ जाता है। कैसे? अब आपने किसी से इल्म लिया, उन्होंने किसी से लिया, उन्होंने उससे 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 आगे से आगे आगे से आगे चलते चलते मुझे बताएं, ठीक है, जितने भी वास्ते काफी ज्यादा होंगे, 1400 साल गुजार के आप एंड में कहाँ पहुंचेंगे? ताबईन तक, उसके बाद किस तक? सहाबा तक, उसके बाद किस तक? उन्होंने किससे इल्म लिया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। उन्होंने किससे इल्म लिया? जिब्राइले अमीन तक, और फिर जिब्राइले अमीन को किसने सिखाया? अल्लाह ताला ने। तो क्या शान है उसकी जो इस इल्म को हासिल करता है, जिसका आगे एक के बाद एक वास्ता, एक के बाद एक वास्ता होते होते कहाँ तक पहुंचता है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, और फिर अल्लाह ताला तक। कितने शर्फ की बात है, कितनी इज्जत की बात है ऐसे इंसान के एजाज का और उसके शर्फ का। कितना बड़ा है, कितना अजीम है शर्फ, इसका तसव्वुर भी नहीं कोई कर सकता। और कितने ही आम घरानों में पैदा होने वाले दीन का इल्म जब उन्होंने लिया, तो कैसे अल्लाह ताला ने उनको अहले ईमान की आंखों का तारा बना दिया। तो इसको मामूली ना समझिएगा, इसके साथ आप जुड़ जाएंगे तो ये आपको रिमाइंड कराता रहेगा, वापस लाता रहेगा। आप खोने लगेंगे ना जब दुनिया में, आप गाफिल होने लगेंगे जब, तो ये आपको फिर पकड़ के ले आएगा वापस। आप दूर जाने लगेंगे ना तो ये आपको खींच के ले आएगा। आप भूलने लगेंगे, ये आपको फिर याद दिला देगा। वरना कोई चीज नहीं आपको याद दिलाएगी। आप मॉल्स में चले जाएं, आप किसी ऑफिस में चले जाएं, आप किसी और जगह पे, जहां पे भी, किसी पार्टी में चले जाएं, किसी जगह पे भी चले जाएं, कहां पे आपको ये जिक्र मिलेगा? कहां पे आपको आखिरत की याद दिलाई जाएगी? कहां पे आपको ये सबक जो भूल गए आप, उसकी याद दिहानी कराई जाएगी? कोई भी जगह नहीं। हर जगह हमें दुनिया की तरफ खींचती है, आखिरत को भुलाती है। ये कुरान ही है जो हमें वापस लेकर आता है, वो जो भूला हुआ सबक है वो ये याद दिला देता है। और ये जिंदगियों से निकल जाए तो इंसान भूलते भूलते बहुत दूर निकल जाता है, बहुत दूर चला जाता है, वो भूल ही जाता है, फिर बिल्कुल याद ही नहीं कभी आती ये जाना किधर था और मैं किधर निकल गया, क्या चीज याद रखनी थी और मैंने कब से भुला दी हुई है, अमल कौन सा करना था जो मेरे लिए नफामंद है और मैंने कब से उसको छोड़ा हुआ। इंसान को याद भी नहीं रहता। फिर इसके साथ जुड़िए, ये इंसान की भलाई का सबसे बड़ा जरिया है, वो भलाई जो हमेशा की भलाई है। इसको मामूली ना समझिए। और कभी ये लोग ज्यादातर कहते हैं आप कुरान को सीखे फिर तरावी में आपको समझ आएगा। वो भाई तरावी में समझ आए या नहीं आए, लोग फिर आगे से क्या कहते हैं, अच्छा चलो तरावी में ना भी समझ आए तो कौन सा ऐसा नुकसान हो गया, 2 मिनट खड़े ही होना है ना। नहीं, आपको ये उनको बताना है और ये आपको भी समझना है कि हम इसलिए थोड़ी सीख रहे हैं कि बस हमें तरावी में समझ आ जाए। नहीं, इसलिए कि ये हर खैर और भलाई का दरवाजा है। जो नेक अमल है ना, आमिल सालेहात, उसकी उसका स्टार्ट इल्म से ही तो होता है। इसके बगैर आप साले अमल कर ही नहीं सकते, जब तक आपको पता ही ना हो। कोई आपको कुछ कह देगा, ये नेकी है भाई ये कर लो, दूसरा आपको कोई और तरफ खींच लेगा, तीसरा कुछ और कह रहा होगा। तो आपको खुद इल्म लेना है। फिर ये इसलिए हम लेते हैं क्योंकि ये इल्म हमें अल्लाह ताला से जोड़ता है, ये उसकी रस्सी है जो उसने दुनिया में लटकाई हुई है, हमें उसके साथ ताल्लुक पैदा कर देता है। फिर इसलिए हमने लेना है कि खुदा के लिए उसको तो पहचान लो जिसने आपको पैदा किया है, कम से कम उसको तो जान लो, को पता तो हो आपका मालिक कौन है, किसने आपको तखलीक की है, कौन है आपका खालिक। इसलिए, और फिर इसलिए कि ये वो इल्म है जो इंसान का जाहिर और बातिन पाक करता है, ये वो इल्म है जो इंसान को जन्नत का शौक दिलाता है, ये वो इल्म है जिससे इंसान को के अंदर जहन्नुम का खौफ आता है, ये वो इल्म है जिससे इंसान की गफलत दूर होती है, ये वो इल्म है कि जिसके लिए अल्लाह ताला ने अपने नबी को फरमाया वकुर रब्बी जिदनी अल्मा, ए नबी आप कह दे, ए अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा। ये वो इल्म है जिससे भलाइयां मिलती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है उसको दीन के इल्म अता करता है, दीन की समझ अता करता है। और ये है वो इल्म जो इंसान के मर्तबे बुलंद करता है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे इल्म की कसरत इबादत की कसरत से ज्यादा अजीज है। सोचिए जरा, बज़ार की यह हदीस है, मुझे इल्म की कसरत इबादत की कसरत से भी ज्यादा अजीज है। इबादत की कसरत तो पता नहीं हमें शौक है, यानी माल की कसरत का शौक है, तो वो तो खैर बहुत ही, उससे तो बहुत ही ज्यादा ही ऊपर। इवन इबादत इंसान करता रहे उससे भी ज्यादा अगर इल्म हासिल करता है ना, तो उसकी ज्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहमियत बताई है। तेरे इब्राहिम नखई फरमाते हैं, जो शख्स अल्लाह की रजा के लिए, शर्त ये सिर्फ अल्लाह ताला की रजा के लिए हो, किसी को दिखाने के लिए, कोई ग्रेजुएशनों के लिए, कोई सर्टिफिकेट्स के लिए, कोई लोगों के अंदर बड़ा ऐसे इल्म वाला दिखाने के लिए अपने आप को, इसके लिए नहीं, सिर्फ अल्लाह तू मुझसे राजी हो जा, इसके लिए दीन का इल्म सीखता है। अल्लाह ताला उसे इतना देता है जो उसके लिए काफी हो जाता है। फिर हमें पता चलता है हजरत अली ने अपने साथियों से फरमाया कि इल्म माल से बेहतर है, इल्म माल से बेहतर है। आज माल के लिए कितने लोग भागेंगे, वक्त लगाएंगे, लेकिन ये माल से ज्यादा बेहतर है। आपको उस जॉब से, उस काम कारोबार से चंद पैसे मिलेंगे ना, ये उन सब से ज्यादा बेहतर है, ये हर उस चीज से ज्यादा बेहतर है, जैसे सूरह यूनुस में आया, जो लोग जमा करते हैं। और फिर हजरत सुफियान सॉरी जो ताबेई हैं, वो फरमाते हैं, फर्ज के बाद, फराइज अदा करने के बाद इल्म हासिल करने से ज्यादा अफजल अमल कोई नहीं, सबसे अफजल अमल फर्जों के बाद ये है। और अब्दुल्ला बिन अब्बास जो सहाबी रसूल है, फरमाते हैं, रात की एक घड़ी में दीन का इल्म हासिल करना, पढ़ना पढ़ाना, सारी रात इबादत के लिए जागने से बेहतर है। एक घड़ी आप दीन का इल्म ले लें। इमाम शाफई फरमाते हैं, कुरान का इल्म हासिल करना नफल नमाज से भी अफजल है। ये तो ऐसे है जैसे आप खाते पीते हैं ना, खाना पीना आपकी जिंदगी की जरूरत है, इसी तरह ये हमारी आखरत की जरूरत है। तो ये इसको सीरियस लें, इसको समझें। आपने ये महीना जो कुरान का महीना है, इसमें कुरान करीम को पढ़ा भी होगा, इसमें कुरान करीम की दौर भी किया होगा, अब इसको अपना साथी बना लें। ये अब ये नहीं कि 11 महीने इसको बंद करके रख दिए, अब जागेंगे दोबारा जब दोबारा रमजान आएगा, नहीं, इसको अब अपनी जिंदगी में शामिल कर लेना। और उन लोगों में हमने शामिल होना है जिनका फिर ताल्लुक जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म के जरिए वहां तक पहुंच जाए, हमारा ताल्लुक उनसे हो जाए, और फिर आगे अल्लाह ताला के साथ। सुभान अल्लाह, कौन सा दुनिया का इल्म या कौन सी दुनिया की चीज आपको ये रिश्ता दे देती है कि जुड़ते जुड़ते 1400 साल जो आप लिंक्स आगे से आगे जोड़ते जाएं, और वो लिंक जाके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रुके, और फिर वहां से आगे जिब्राइल अमीन और अल्लाह ताला तक पहुंचे, जमीन की भी मखलूक और आसमानों की भी मखलूक शामिल हो गई, जिब्राइल अमीन फरिश्तों के सरदार, उन तक लिंक पहुंच गया हमारा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बेहतरीन इंसान इस दुनिया में, इस जमीन के ऊपर कोई उनसे बेहतर हस्ती नहीं कभी चली, उन तक हमारा एक से एक, एक से एक वास्ता पहुंचते पहुंचते वहां तक पहुंच गया, क्योंकि उन्होंने ही सिखाया ना आगे, किसने हमें दिया ये इल्म। तो सुभान अल्लाह, अल्लाह हू अकबर, कभी अगर आप इस नजर से देखें इस इल्म को, तो आपको दुनिया की हर चीज से प्यारा लगे, ये आपको ये फालतू काम ना लगे, ये फारिग लोगों का काम है, पता नहीं ऐसे ही बैठे इनको और कोई काम नहीं मिला तो चलो ये करना शुरू कर दिया, ये नहीं लगेगा। आप देख लेंगे फिर निस्बत आपकी जुड़ती किसके साथ है जाके। सुभान अल्लाह, खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनको अल्लाह ताला इस काम के लिए चुन ले, ये अल्लाह के दीन के इल्म को ली और फिर अपनी जिंदगियां उससे संवारें, अपनी जिंदगियों को ब्यूटिफाई करें और ये इल्म उनको ले के फिर जन्नत तक पहुंचा दे और आसान कर दे रास्ते को, उस रास्ते पे चलना आसान हो जाए, वरना रास्ता आसान नहीं है लेकिन ये आसान बना देता है। तो इसलिए आप लोगों के सामने अब लिंक भी आए होंगे, जो लोग सिर्फ सुनते रहे आज तक वो इंशाअल्लाह ताला अब इसमें शामिल हो जाए। हमने आपसे कोई फीस तो नहीं लेनी ना, कोई पैसे नहीं लेने आपसे, कोई एक पैसा भी नहीं लेना, लेकिन कम से कम ये सीखना तो शुरू करें आप। आपको डर किसका है, क्या आपसे लेंगे? पैसे तो लेने नहीं है, वक्त, वक्त वो ही कीमती है और वो ही वक्त आपका बचा हुआ है जो आपने इसके साथ लगा दिया, बाकी तो सारा जाया है ना। या तो आप किसी नेकी में लगा दिए वो बच जाएगा, इबादात में लगाया वो बच जाएगा, या ये इल्म सीखने में लगाया तो वो बचेगा, बाकी तो सब फारिग बिल्कुल जाया। तो आपने वक्त बचा लिया अपना, वेस्ट नहीं किया है। तो इसलिए अब जब रमजान जा रहा है तो इसको ऐसे जाने ना दें, इन लम्हात को कीमती समझें, इनमें अपने आप को कहीं ना कहीं बांध लें। बांधने से फायदा क्या होता है कि अगर हम भागने भी लगेंगे तो कोई चलो कह देगा, कोई पकड़ के रखेगा, अपने जैसे जो कुरान के शौकीन साथी हैं वो हाथ थाम लेंगे, व तवासव बिल हक, एक दूसरे को हक बात की तलकीन करना वो वापिस ले आएंगे। तो फिर इंसान कहीं निकलने भी लगता है तो चलो कोई तो लोग होंगे जो थाम के ले आए, तो ऐसा मुश्किल नहीं है, इसको बहुत मुश्किल चीज ना बनाए, ये वो चीज है जो अल्लाह ताला ने आसान की है। और खुशकिस्मत है जिनको ये साथी भी मिल जाए जो उनको खैर की तरफ बुलाते हैं, जो उनको भागने नहीं देते दूर, जो उनको भूलने नहीं देते, वो भूलने लगते हैं तो उनको वापस ले आते हैं। तो ये तो हमारी खुशकिस्मती है अगर हमें ऐसे साथी मिल जाएं। इसलिए सिर्फ सुनने वाले ना रहें, इंशाअल्लाह ताला आप एक कदम आगे बढ़ाइए और रमजान से पहले कि इससे पहले कि खत्म हो, इससे पहले ही आप अपने आप को आगे जो रमजान के बाद का टाइम है उसके लिए, खैर के दरवाजों के लिए अपने आप को अभी से तैयार कर लें। ये दरवाजे बंद नहीं मैंने करने, अब ये दरवाजे खुले रहेंगे और सारी जिंदगी खुले रहेंगे इंशाअल्लाह। तो अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो, आपने मेरी बहुत सारी बात सुनी है, अल्लाह ताला इसको दिलों में उतार दे, अल्लाह ताला मौत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला हमें जो ये वक्त जा रहा है, ये कीमती घड़ियां जो गुजर रही हैं, इनको हमारे लिए गवाह बना दे कि हमने इनमें अल्लाह ताला को याद किया था, और ये जो लम्हे गुजर रहे हैं इनमें अल्लाह ताला गवाह बना दे हमारे फरिश्तों को कि हमने लोगों को बुलाया था अल्लाह ताला की तरफ, हमने कोशिश की थी, आगे अब उनकी मर्जी है वो लब्बई कहे या वो मुंह मोड़ के बैठे रहे, तो लब्बाई कहेंगे तो अल्लाह ताला के कलाम की पुकार को लब्बाई कहेंगे और इनकार करेंगे तो इसको करेंगे। अब आपकी मर्जी है कि आप क्या करना चाहते हैं, तो ये मेरी तो कोई काम नहीं है, मेरा पर्सनल काम नहीं आप कर रहे, तो मेरे मैं अपनी कोई खिदमत नहीं करा रही आपसे, ना ही मैंने कोई इलेक्शन में खड़े होना है कि मुझे वोट चाहिए तो मैं अब ज्यादा वोट कर लूँ, जब उसके लिए आप लोगों को बुला रही हूँ। हाँ जो करेगा तो हाँ ये लालच जरूर है कि सदका जारिया बन जाए, तो अल्लाह ताला इसको कबूल कर ले और इस पुकार को भी अल्लाह ताला अपने हाल लिख ले कि मैंने पुकारा था। अब लबाई कहने वाले कितने लोग हैं ये इंशाअल्लाह ताला आज पता चल जाएगा जब रजिस्ट्रेशन आएंगी तो। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। इंशाअल्लाह ताला अब हम स्ट्रेट चलेंगे अपने जिक्र के सेगमेंट की तरफ क्योंकि टाइम बहुत हो गया। तो हमने इंशाअल्लाह आज जिक्र अपने जितने हमने पहले जिक्र किए हैं इतने दिन में उनको भी हमने करना है इंशाअल्लाह ताला। अब ये वक्त जा रहा है, अब ये महीना जा रहा है, अब इसकी उदासी भी है, लेकिन जो वक्त मिल जाए उसको हम बस किसी तरह इसको हाँ किसी तरह इससे फायदा उठा लें, किसी तरह इसको कैश करा लें, किसी तरह इसको बस मजबूती से पकड़ लें। अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियां करे और इसको हमारे हक में गवाह बनाए इस महीने को। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।